और मैं सोचती हूँ किसी कौम का असल देखना है। दो जुमले बोलती हूँ यानी दो मुख्तलिफ सिनेरियोस। कोई इंसान कितना दीनदार है, यानी आप माशाल्लाह कुरान पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, आप दरसों में जाती हैं, और आपके शौहर जुमा पढ़ते हैं, मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप रियल में कितने दीनदार हैं? आपको तो ये कब पता चलता है? जब आप उम्रे पे जाएंगी, जब आप हज पे जाएंगी, जब मोटा सा दुपट्टा लपेट कर आप बिल्कुल मखसूस अंदाज में जायनमाज़ पे बैठेंगी? नहीं, बींग अ पर्सन, एक इंसान क्या है असल में, ये पता चलता है जब उसके बच्चों के रिश्ते होते हैं, बच्चों की शादी, बच्चा। अब चूंकि आप बड़ी खवातीन हैं, मैं आप बच्चियों को भी कह देती हूँ, अब आपका जो जो दीन दिखेगा ना, ये आपकी शादियों पे दिखेगा। क्या आज आप इस हॉल में कुछ ऐसी माएँ हैं जिनकी बच्चियाँ कहीं से भी कुरान पढ़ चुकी हैं, वो हाथ खड़े करें? मैं नहीं कहती नूरुल कुरान और सबीलुल जन्ना, कहीं से भी आपकी बच्चियों ने कुरान किसी मदरसे से पढ़ा, इधर भी खुशाब में कुछ मदरसे हैं, वो माएँ हाथ खड़े करें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नसीहत कर दूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि आप क्यों दखल अंदाजी करती हैं। अपनी इन मासूम पाकीज़ा बच्चियों को ना कदरे लोगों के हाथों में ना दीजिएगा। आपने इन पे मेहनत की है और इन्होंने रो रो के, नदामतों के आंसू बहा बहा के अपने अमाल नामे सफ़ेद किए हैं। इनसे पिछली जिंदगियों में अगर कोई कमियां कोताहियां हो गई ना, तो तौबा ने इनको पाक कर दिया। अब खुदा के लिए इन बच्चियों को सिर्फ खानदान के नाम पे ना दीजिएगा, बिरादरी के नाम पे मत ब्याहिएगा, किसी की बड़ी गाड़ी देखकर, किसी के मुरब्बे ज़मीनें देखकर ना ब्याहेंगे। जिस लड़के के हाथ में इन बच्चियों को देंगे, इनको ना उसकी माँ को देखें ना बाप को देखें, हाजी साहब का बेटा और आलमा की बेटी, नहीं, अब वो वक्त नहीं रहा। उस लड़के को देखिएगा, क्या सच्चा मुसलमान है? आपके इस हीरे की कदर वो करे, देखिए अंगूठी है ना, आपने अंगूठी के अंदर एक क्रिस्ट वो डालना है ना, अगर शीशे का नख कोई भी लेके लोहे की अंगूठी में डाल देंगे, कोई नहीं, ऊपर सुराख नहीं है, खैर है गिर भी क्या तो और लगवा लेंगे और अंगूठी ही फेंक देंगे। लेकिन हीरा लगता है ना तो एल्यूमिनियम में, पक्की मजबूत धात, फिर उसके आगे सिरे भी डबल डबल होते हैं कि कहीं अंदर से हीरा गिर ना जाए। कुरान पढ़ी हुई बच्चियां हीरे मोतियों से कीमती हैं। इनकी गोदों में अगली नस्ल ने पलना है। अपनी बेटियों को कभी भी ऐसे लोगों के हाथों में ना दीजिएगा जो अपना तो छोड़े इनका भी दीन बिगाड़ने पे आ जाए। ये रोएंगी, रात को रोएंगी, बद्दुआएं देकर सोएंगी। अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं, अत्तय्यिबातुलित्तय्यिबीन, और सिर्फ ये जो रस्मी बात है ना, हाँ हाँ बड़े नेक हैं, पढ़ लेगा नमाजें बाद में, लेकिन नमाजी और बेनमाजी का निकाह ही नहीं होता, जानी और पाक का निकाह ही नहीं होता। ये तो वो मसले हैं जो अगर हम मिंबर पे खोल दें लोग तो वाड़े पड़ जाएं, कितने घरों में मुसीबतें पड़ जाएं कि अच्छा, एक छत के नीचे फिरौन और आसिया नहीं रह सके, तभी तो जुदाइयां हुई। अल्लाह के नबी की बेटी जब मुसलमान हुई, शौहर इस्लाम पे नहीं था, अल्लाह के नबी ने बेटी घर में बुला ली। नबी की दो बेटियों को तलाक सिर्फ इसलिए हुई कि वो मुसलमान हो गई और अबू लहब के बेटे मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये तो बड़ा मसला है अहम, तो इन बच्चों की कदर करें, आपकी कब्रों की ठंडक है ये इंशाल्लाह। ये कैसे हो सकता है कि ये एक मासूम सी बच्ची जाकर एक 25-30 साल के मर्द जिसकी आदतें बिगड़ चुकी, खराब हो चुका, उसको ठीक कर लेंगी? रातों रात वो कहेंगी उठो नमाज पढ़ो, नमाजें पढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो आप खुद जान जोखों में डाल रहे हैं। कभी को अपनी बेटी को किसी नखट्टू के हाथ में देता है कि नहीं नहीं मेरी बेटी उसको जाकर इतना अच्छा सबक सिखाएगी मेहनत करने का, वो अगले दिन ही उठकर कुदाल लेकर चल पड़ेगा काम करने? आप कहते रहने तो मेरी बेटी खाएगी कहाँ। किसी होमलेस से बेटी ब्याहते हैं हम, कोई एक जमीन नहीं, कुछ नहीं, कोई अजनबी इस शहर में आया, कोई देता है? कहते नहीं, पता नहीं कौन है, मेरी बेटी को किधर ले जाएगा। तो आप समझ गए। और इसके ऑपोजिट भी कहती हूँ, आप में से कितनी माएँ इधर हैं जिनके बेटे माशाल्लाह दीनदार हैं? बाकियों का क्या ख्याल है अपने बारे में? वल्लाही अगर आपके बेटे नेक हैं तो उनको नेक बेटियां ढूंढें उनके लिए। अपने बिगड़े हुए बेटों को किसी की बेटी के साथ ना ब्याहें। मैं कुरान पढ़ने वाली बच्चियों की तो बात ही ना करूं, उसको शर्त लगा दें तुम्हारी शादी नहीं करूंगी जब तक तुम 5 वक्त की नमाज नहीं शुरू करोगे। यह है तामरूना बिल मारूफ वतनहाउना अनिल मुनकर। आज हम जुम्मे भी पढ़ लेते, रोजे भी रख लेते, नमाजें भी पढ़ लेते, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदलती। चलिए तीसरे पॉइंट पे आती हूँ। तो ये तो बड़ा दर्दमंद टॉपिक है, और यकीन करें कि अगर आपने अगर अपने बच्चों के रिश्ते अभी नहीं किए हुए तो थोड़ा सा रुक जाए, कुछ जल्दी नहीं है, कुछ नहीं खाने को मांगती ये बच्चियाँ। देखिए अल्लाह इनके ईमान को जहाँ सेट करेगा ना, उस दर्जे का बंदा भेजेगा। कुछ बच्चियों की शादियों में थोड़ी सी देर हो जाती है, मतलब 20 में नहीं शादी हुई, 21, 20, 25 हो गई, माँ बाप फिक्रमंद होते हैं, माँ बाप क्या बच्चियाँ भी परेशान हैं, और कभी ऐसे लगता है कि अब होनी नहीं। जब वो बच्ची 25 से 28 या 30 की होती है ना, ऐन उस उम्र का एक अच्छा सा मर्द अल्लाह भेजता है, क्योंकि जब वो गाड़ी राउंड अबाउट पे घूमती है ना, तो मुस्तकिल अब राउंड पे है। अभी कुरान के दौरान ईमान इनका सेटल हो रहा है। कई ऐसी हैं जिनकी कुरान के बाद सोच ही बदल चुकी होती है, बचपन की मंगनियां हुई होती हैं, वो कहती हाय अब मैं इस मर्द के साथ कैसे रहूं, तो गम ना करें। और जिनकी अपनी अभी शादियां और रिश्ते नहीं हो रहे, वो ये गम छोड़ दें, वो एक और एडवांस कोर्स करें, वो अपने ऊपर एक और पुख्तगी का वक्त लाएं। आपने नई नस्ल को पैदा करना है, दीमक लगे हुए और इस तरह के बच्चे हम पैदा करेंगे। तीसरी चीज पे चलिए, मैं खुलासा अब करके जल्दी से वाइंड अप करूंगी, ताकि हम ढूंढें तो सही कि ये उम्मत किधर चली गई। तीसरी चीज यह है कि आखरत तो छोड़ दीजिए, जन्नत तो एक साइड पे रखिए, आज मादी तरक्की और हमारी उम्मत, जरा उसको भी देख लीजिए, जिसको कहते हैं तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन। क्या आज उम्मत मुस्लिमा इस दौर में दुनियावी तौर पे भी खुशहाल दिखती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, गाड़ियां बनाने में, सेलफोन्स बनाने में है हम? आज हम इक्तसादी तौर पे, इकोनॉमिकल पीछे, अस्करी मैदान में हम पीछे, हथियार दूसरों से लेने हैं, अपनी जमीनों की पैदावार खुद खाने के काबिल नहीं है। आज क्या अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं कि तुम बैलों की दुमे पकड़ लोगे? जरात है तो दाना दुनका अपने आप को नसीब नहीं, बाहर जाएगा और आपको वो मिलेगा जो बचा। गाय है तो दूध का इनकार कर रही है, आज की उम्मत दूध और दाने भी बाहर से ले रही है। क्या वजह हुई कि जब कौमें अल्लाह के रस्ते की जिद्दोजहद छोड़ देती हैं, अल्लाह ताला उनको इसी तरह लाते हैं। आज आप देखिए कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, घर बनाने में। मेरा ख्याल है, मैं गलत फैक्ट्स ना बोल दूं, मुझे जरूरत भी नहीं कोई ज्यादा बोलने की, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों की जद में आता है जहां सबसे ज्यादा ये इंटरनेट यूज होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और जो ABCDC है, सबको पता है। पाकिस्तान में रातों को जाग जाग कर नेट यूज करने और अब तो बातें ही किए जाओ, ये नंबर वन में कहीं नहीं तो दूसरे तीसरे पे आता है। एक एक बंदे की जेब में अब दो नहीं तीन तीन फोन है। डबल सिम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी थी, पहली दफा जब देखी तो पाकिस्तान में देखा कि, तो मैंने कहा पता कैसे चलता है कौन सा उठाओ, कहते नहीं एक ही फोन में दोनों डलते हैं। अच्छा करना है तो ये करो, सुनना है तो ये करो, नेट है तो इसका, आप रखिए मुझे नहीं चाहिए फोन। मेरे जैसा बंदा तो एक फोन भी ना यूज करे तो दो तीन में कहां करूं। आज हम मुअत्तल हो गए, लिखिए उम्मत मुस्लिमा आज वो उम्मत है जिसकी सारी कुव्वतें मुअत्तल है, वसाइल खत्म। अल्लाह ने जमीनें इतनी जरखेज दी हैं कि आज भी अगर हम अपने कमर कस लेना तो हमारी जमीनों से वो हो गए कि एक साल में अपने मुल्क का सारा कर्जा उतार दें, लेकिन मेहनत की आदी नहीं है। लिखे आज उम्मत मुस्लिमा लॉस्ट है क्योंकि ये मेहनत की आदी नहीं है, वसाइल हैं इस्तेमाल नहीं कर रही, गफलत और नींद में सोई हुई उम्मत है। हम आलमी दौड़ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम तरक्की लेकर नहीं चाहते, हमारे पास जो सबसे कीमती चीज वक्त है सबसे ज्यादा इस्तेमाल गलत होता है। आपको पता कि बाहर की दुनिया में इम्प्लॉयज को पर आवर पे मिलती है, और हर मुल्क का एक मिनिमम वेजेस का तरीका है। जैसे अमेरिका में समझ लें कि आजकल शायद $12-13 मिनिमम वेजेस है, इसी तरह हर मुल्क का फर्क है, नॉर्वे में शायद 150-200 होगा, कुछ इस तरह से है। हमारे मुल्क में क्यों पर आवर नहीं देते, मैंने पूछा था किसी से एक मौके पर, तो उन्होंने कहा कि यहां दे हमारी तो कंपनियां उड़ जाएंगी, इन्होंने एक घंटे में करना क्या, सिर्फ चाय पीनी है और फोन पे बातें करनी है, तो हम उनको यहाँ 1,000-2,000 रुपया कैसे दें। आज हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते। आज सबसे कम वजन और कम वक्त वाली चीज इंसान है हमारे पास। और अगला पॉइंट लिख लें कि आज हमारी अकली कुव्वतें भी मुअत्तल है, सोचना भी नहीं रहा, जमूद है, तकलीद है, इज्तिहाद नहीं है, रिवायत से काम लेते हैं, तजदीद नहीं करते, नकल करते हैं, इजाद नहीं करते। सबसे ज्यादा दुनिया में जाली चीजें आपको हमारे मुल्क में मिलेंगी, पेरोडी, कॉपी, रेप्लिका। एक असल ब्रांड बनता है तो साथ कहते हैं उनका ही रेप्लिका वो खुद ही बना देते हैं कि असल से ज्यादा ये बिकना है। हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, हम हिफ्ज करके रट्टा लगाते हैं लेकिन तफक्कुर और तदब्बुर नहीं करते। हम दूसरों की सोच और अफकार को नाफिज करते हैं लेकिन खुद नहीं सोचते। हम दूसरों के मुफक्करीन के ख्यालात लाते हैं जिनके अंदर गैरों की आमेजिश अपना नहीं सोचते। और आज हमारा दीन रिवायती दीन है, माजरत के साथ, वी आर ट्रेडिशनल मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम बाय बर्थ। आप किसी साइंस के सब्जेक्ट में जाइए, फिजिक्स में जाइए, मैथमेटिक्स में जाइए, हम सिर्फ दूसरों के लॉज और उनकी इक्वेशंस को ले रहे हैं। और आप देखिए कि आज हमारी बेबसी की इंतहा देखिए कि वेस्ट उनसे टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं, हथियार भी उनसे खरीदते हैं, और उन्हीं की बोलियां बोलते हैं, उन्हीं की लिखी हुई किताबें और उन्हीं की रिसर्चेस हम अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं। और आप देखिए कि 20 इस्लामी मुल्क, नाम नहीं लेने की जरूरत, उनके अंदर भी सारे साइंसी सब्जेक्ट्स गैर मुल्की जुबान में पढ़ाए जाते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ भी ऐसा ही है। मैं जब आज से 20 साल पहले पढ़ती थी तो हमारे साइंस के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे, उर्दू में बुक्स ही नहीं, और उर्दू में इतनी औखी उर्दू, समझ ही नहीं आता, ये जी नहीं आती और ये नाम ही इतने मुश्किल है। यानी हम अपनी जुबान छोड़िए दूसरों की, और हम खुद कहते हैं कि जी हम अपनी जुबान अरबी और उर्दू में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। आप देखिए, दुनिया में एक छोटी सी रियासत है, नाम लेने की जरूरत कोई नहीं है, इतना छोटा है कि अगर आप पूरे ग्लोब बनाए ना तो उसका वाज़े नक्शा भी नहीं कोई दिखता। चंद मिलियन आबादी का वो मुल्क है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को वो हिब्रू सिखाते हैं, इब्रानी जुबान उनकी कौमी जुबान है। वो इजाज़त नहीं देते कि किसी और जुबान में हमारा बच्चा इल्म हासिल करे, क्योंकि जुबान तो दूसरी तरफ ले जाती है बंदे को। याद रखिए, जुबान ने दूसरों के अकायद, उनकी रिवायात, उनकी सकाफत, उनके कल्चर को लेकर आती हैं। आप उर्दू बोलें, आप उर्दू वाले बनेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता उर्दू से मोहब्बत होगी, वो कल्चर अच्छा लगेगा। आज आप इंग्लिश बोलें, देखिए, मैं नहीं इंग्लिश बोलने से बुरा कहती, शुरू में आपको फ्रेंच भी सुनाई है, कोई और मुल्क का बैठा हुआ तो वो भी आकर अपनी लैंग्वेज सुनाए, उस मुल्क के लिए वो लैंग्वेज बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ के आपको फ्रेंच में दर्स देने लग जाऊँ तो मैंने क्या तीर मार लिया, और आपको क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत का। आज हम जैसे बाकी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं ना बरामदात, इसी तरह याद रखिए, दूसरों की जुबानें और उनकी बोलियाँ बोलकर हमने उस दरख्त की शाखें अपने मुल्कों में बुला ली जिस पे मादा परस्ती का रंग चढ़ा हुआ है, मटीरियलिज्म का रंग चढ़ा हुआ है। आज हमारे बच्चे उन्हीं के ब्रांड्स चाहते हैं। देखिए, अमेरिका में आप $1,000 कहते हैं, मैं आपको मिसाल देने लगी हूँ। कल मैं किसी से बात कर रही थी, को मेरे सामने शॉपिंग हो रही थी, मैंने कहा इतनी महंगी, ये इतने की है? बिलीव मी, हर साल जब भी आऊँ, अब तो 2 साल बाद आई हूँ ना, तो जो चीज़ मैं 100 की सोचती हूँ वो 1,000 की होती है इधर, क्योंकि आपका अब 100 रुपया मेरा 1 रुपया बन गया और 1,000 रुपया 100 बन गया। तो मैंने कहा कि ये इतने की चीज़ है, इतने की तो होती है, मैंने कहा होते कहते उतने में क्या मिलता है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं तो बाहर से आई हूँ, मैं तो अपने एंगल से देख रही हूँ, लेकिन यहाँ वालों के लिए ये मेरे हिसाब में तो अनअफोर्डेबल है। और फिर मैंने उनको ये कहा कि असल शायद मसला ये है कि देखिए ना, बाहर आप हैं, वैसे अमेरिका में तो $10, $20 बहुत वैल्यू है उधर। आप ग्रोसरी लेकर आएँ पूरे वीक की, $20-25 में बड़ी अच्छी ग्रोसरी आ जाती है। मसला क्या कि जब इधर उसको हम 160-170 के पहाड़े के साथ गिनते हैं तो 1,000 बनते हैं, मुझे इसलिए चुभ रहा है, नहीं समझे। आप वहाँ एक स्काफ लेते हैं, आम स्काफ $10 का बड़े आराम से आ जाता है, $10-15 में अच्छा स्काफ ले लें। अब वो स्काफ जब इधर आता है या इधर गिनते हैं तो उसको ज़रब लगाएंगे, वो कई हज़ार का है। तो वो असल में करेंसी डिफरेंस भी मुझे पागल कर रहा है, आपको देख करके लोग कैसे करते हैं। लेकिन आप देखिए, इधर ज़्यादा खर्चे करते हैं लोग, बाहर वाले एक दफ़ा लेते हैं, एक दफ़ा सर्दी गर्मी बनाते हैं, यहाँ के तो हालात मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा सारा सोर्स पैसा शादियाँ करने में और घर बनाने में लग रहा है, सच है कि झूठ है? सारी जिंदगी कमाते हैं ताकि घर बन जाए या शादी हो जाए। बच्चे की शादी हमारे लिए इतना बड़ा मरहला है कि जैसे हमने दुनिया फतेह कर ली, हमने किसी मुल्क को इस्लाम दे दिया, और हम फिर उस मादा प्रस्ती के जाल में ऐसे उलझे। क्लास सिस्टम, ये भी एक मसला है उम्मत का। आज ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है? 15,000। अच्छे घर वाले 15 देते हैं, मेरा ख्याल है खुशाब और जोहराबाद में 10,000 होगा, गलत है कि सही? 10,000 लिखिए जरा। देखिए, मैं कोई आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, आप नहीं ऐसे होंगे, 10,000 रुपये में एक बंदा पूरा महीना आपकी गाड़ी चलाता है, जिसके 4 कम से कम बच्चे भी होंगे, हो सकता है अपाहज हैंडीकैप या बूढ़ी माँ भी होगी जिसको कभी कभी अब दवाइयाँ भी चाहिए, बीवी भी है, 4 और 2, 6 और 7, 8 लोगों को किफालत करने वाला बंदा 10,000 रुपये ले रहा है आपसे। ड्राइवर है वो आपका, सारा दिन वो गाड़ी चलाता है, आप उसी के जरिए कई बिल पे कराते हैं, ये ज़रा फलां ज्वेलर को दे, ये फलां बुटीक वाले को दे। और वो जब देखता है, ये बाजी ने कपड़ों का बिल दिया 1,00,000 रुपये का, जो मैं 10 महीने काम करूंगा फिर 1 लाख रुपया कमाऊंगा। तो ये बाजी के 3 जोड़े सिलकर आए 1 लाख रुपए में, क्या होगा वहाँ? ये खैर उम्मत नहीं होगी, फिर वहां नफरतें बढ़ रही, फिर वो कत्ल करेंगे, फिर वो लड़ाइयाँ कराएंगे। 10,000 रुपये में वो क्या करता होगा और क्या खाता होगा, और आप 10,000 रुपये में एक आम सा फॉर्मल जोड़ा बना लें तो बड़ी बात है। ऐसे ही कि नहीं, ये नफरतें पैदा होती हैं आज हमारे इस मुल्क में, ये नफरत है। आप एक गली से गुजरे, अभी तो ये रोड पे बैठे हैं ना, अंदर गलियों में, ये कोठी, ये लाल रंग की, ये गुलाबी, है कि नहीं हमारे मुल्कों में हवेलियां? नॉर्वे वालों ने पाकिस्तान में आकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और आप जाके यूट्यूब पे लिखिए खारियां की वीरान हवेलियां, तो जाकर देखिएगा। उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा आया किधर से है, उधर से इधर आ गया, अब वो किसका है, हमें उससे क्या लगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने लगी हूँ, यहाँ राल टपकती है लोगों के घर देखकर, हर कोठी दूसरे से अच्छी। बड़ा घर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इतना पत्थर सोना चांदी लगा देना, उसको करना, ये बुरी बात है। आपको पता है कि बाहर की दुनिया में क्या है? आप बाहर का घर अपने हमसाए के घर से मुख्तलिफ नहीं कर सकते। बल्कि यूके में आप चले जाएं, और खास तौर पे फिर वो भी लंदन में, पूरी ट्रेन नहीं होती जैसे बोगियां, पूरी रोड पे ऐसे एक पूरा घर है, सेम नक्शा, सेम जगह खिड़की, सेम बिल्कुल एक ही है। मैं अक्सर हंसती हूँ जाके कि याद कैसे रहता है मेरा घर कौन सा है, और ऊपर ऐसे चोंच बनी हुई है ना छत की, तो इस चोंच के इधर वाला घर आपका, यानी ये जितनी बड़ी जगह ये हॉल है ना आपका, ये वाला जिस हॉल में आज हम बैठे हुए, इसमें अल्लाह झूठ ना बुलाए, बिला मुबालगा, बिला मुबालगा कह रही हूँ, डरते हुए भी इसमें कम से कम 40 से 50 घर होंगे। ये इस कोने में एक कमरा, ये घर, ये जितना बड़ा स्टेज है इतना ही घर होता है वहाँ, डब्बे 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 बनाकर। लेकिन इजाजत जिस चीज की नहीं है वो ये है कि आप बाहर से ये नहीं कर सकते कि मैं अपने घर के बाहर, चलो नक्शा तो मैं नहीं बदल सकती तो मैं संगे मरमर लगा लूं। वो कहते हैं यूनी कलर दिखो, तुम्हारा और हमसाय का घर एक लगे। नॉर्वे में ग्रे, व्हाइट और स्किन, इन और रेड कहीं कहीं जैसे ईंटों का, इन 4 रंगों के अलावा कोई मटेरियल बाहर यूज करने की इजाजत ही नहीं। ये बड़े बड़े बैनर छत से लेकर जमीन तक औरत की तस्वीर आप लगा सकते हैं, वो नहीं लगाने देंगे। इतना को ये सिर्फ जितनी डॉक्टरों की ऑफिस के बाहर एक नेम प्लेट होती है ना ऑफिस के बाहर, इतनी नेम प्लेट सिर्फ बाहर दुकानों पर लगाने की इजाजत है। उधर पंपन शो है नहीं, ये जिसको आप हवाई जूती नहीं कहते, टूटी हुई जूती, रफ जूती, वल्लाह ये पहन के एयरपोर्टों पे फिरते हैं क्योंकि वॉक करनी होती है, वो कहते हैं इट्स कंफर्टेबल। हम जूती का बाहर का डिजाइन देखते हैं, वो अंदर देखते हैं कि सॉफ्ट कितनी है, वो पर्स की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, रिलैक्स्ड अच्छा सॉफ्ट पर्स, हम उस पर लगे हुए मोती सारे फूल बूटे देख के लेते हैं। ये उम्मते वसत खो गई इन कपड़ों जूतों में और इन चीजों में, कोई बुरी बात नहीं थी लेकिन अगर ये मकसद हयात बन गया तो बड़ी बात है। और एक और चीज पे चलिए, इस उम्मत को ढूंढने निकले हैं ना तो हमारे तालीमी इदारों का क्या हाल है? माशर्ती तौर पर जिस मुल्क के तालीमी इदारे आप कह लीजिए कि मादा परस्ती की जद में आ जाएंगे, वहां से फिर नस्लें बन के नहीं निकलेंगी, बिगड़ के निकलेंगी। अच्छा बच्चा स्कूल से निकल कर कॉलेज में थोड़ा सा बिगड़ता है, और थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बच्चा या बच्ची कॉलेज से निकलकर यूनिवर्सिटी में पूरी तरह बिगड़ जाती है। अगर इस पे कुछ और पूछना है तो बाद में पूछ लीजिएगा। आज हमारे कॉलेजेस के बाहर के लॉन और उसके इर्द गिर्द जो फूड चेन्स बन गई वो क्या मंजर पेश करती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था लास्ट टाइम पे, अभी इस दफा नहीं देखा। लास्ट टाइम मैं अब किसी मेडिकल कॉलेज में किसी बच्ची को लेने छोड़ने के लिए किसी के साथ थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये फिल्मों की शूटिंग है? गोदों में सर रख के लड़कियां लड़कों के साथ बैठी हुई हैं बाहर कॉलेज के बाहर जो खुली जगह है उधर, और जितने फूड चेन्स हैं इंपोर्टेड, वो कहती आप बनाते ही वो चेन्स उधर हैं जहां कोई कॉलेज है, ये डेटिंग सेंटर बन चुके हैं। और ऊपर हम आए तो वो एक लड़की थी तो बाथरूम में आई, खोल कर पर्स उसने खूब तेज सा मेकअप किया, टुक टुक करके अपना पर्स लेके निकल गई। तो वो कोई चढ़ती धूप में उसने मेकअप, इस वक्त उसको क्या मुसीबत थी करने की। जिस मुल्क की तालीम गाहें करप्ट हो जाएंगी और वहां फैशन और गंदगी और बेहूदगी होगी, उनकी नस्लें दागदार होंगी। थोड़े ही पीछे हैं अब हम वेस्ट से, वहां तो लिविंग टुगेदर का नाम था ना, यहां हम जो नाम ले रहे हैं उसको छोड़ें। और बुरी बात जो है वो नहीं है बुरी जो वो करते हैं, बुरी बात है कि हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आज हमारे कॉलेजेस क्यों बदनाम है, आज हमारी यूनिस क्यों बदनाम है? इसलिए कि हम कुछ गैर जरूरी कामों में मशगूल हैं, और जानबूझ के टाल मटोल से काम ले रहे हैं। और एक जुमला लिखिए, बड़ा कड़वा जुमला, अगर आप में से कोई तालीम से मुतल्लिक है ना तो वो इस जुमले को ज़रूर नोट करे कि हमारे तालीमी निज़ाम मुलाजिम तो तैयार कर रहे हैं आज, लेकिन उलमा या साइंसदान नहीं बना रहे। नौकर, सर्वेंट्स, जॉब मिल जाएगी। आप मुतालिया देखिए, रीडिंग की आदत, कितनी लाइब्रेरीज हैं इस खुशाब शहर में? एक भी नहीं, कह रहे थी और ख़त्म हो गई। आपको था कि आप अमेरिका में जाकर, कभी जाएं अगर अल्लाह करे, कभी मौका मिले तो जाइए, कोई जगह आपको बैठने की ना मिले, आपको गली गली लाइब्रेरीज मिले। और ये यूरोप में नहीं है, मैंने नहीं देखी, कम होंगी, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में भी ऐसे ही होगा। हमारे अपने वहां जहां हम होते हैं मस्जिद, सामने इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, बुक्स, एसी, कंप्यूटर्स, वहां स्नैक्स रखे होते हैं, बच्चे अपने घरों से निकलकर अपना बस्ता ले जाके लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं कि फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि माहौल बना होता है। हम कितना पढ़ते हैं आज, हमारा पढ़ना पढ़ाना किधर हो गया? मुझे तो लगता है किताबें कुछ सालों में वैसे ही खत्म हो जाएंगी, और माहौल ही कोई नहीं। और आप देख लीजिए, सुस्ती, आराम, आज शहद से भी मीठा लगता है मैं ये लफ्ज़, छुट्टी। आज माजरत के साथ हम पाकिस्तान छोड़ दीजिए, पूरी अरब दुनिया को देखिए, तईशात पसंद हो गए हम। ब्रांडेड 500 रुपए का आप एक बर्गर खाते हैं, देखिए अमेरिका में $3 का बर्गर चुभता नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में 500 रुपए का एक मैकडोनल्ड का बर्गर जाती है। और उसी बर्गर शॉप यानी मैकडोनल्ड का नाम मैंने ले लिया, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे और वो भी मुझे माफ़ कर दे, मैं कोई उनके ऐसा कोई बुग़्ज़ नहीं रखती, लेकिन सिर्फ आपको ट्रेंड बताने की बात कर रही हूँ। उसी के बाहर कोने में एक रेड़ी पे बर्गर शॉप होगी, जिसमें कीमे वाला बर्गर और होगा, और वो अंदर 500 का, तो ये 50 रुपए का होगा। और यकीन करें कि बाय बर्थ या बाय टेस्ट हमें उसका ज्यादा मजा आना है कि नहीं, क्योंकि उसमें मिर्चें डाल लो, उसमें प्याज डाल लो, जो मर्जी कर लो। उम्मत इधर खो गई, आज उम्मत खोई हुई है तो वो चेन फूड्स में खो गई। आज हमारी जिंदगी तईशात में चली गई, और आज भी मुसलमानों में 50-60% मुसलमान फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं, और 9 के बाद उठना शुरू करते हैं। आप कहें कि सुबह की नींद उन्हें खाने से भी ज्यादा महबूब है। आज हम सुबह का नाश्ता गोल कर गए, हमारे बच्चे नाश्ता ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि सोना अच्छा लगता है, रातें जागते हैं, मिड नाइट मील्स खाने होते हैं, आधी रात को पिज्जा की सेल लगनी है, उसके लिए बैठे इंतजार कर रहे हैं जैसे कोई तहज्जुद का इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि वो खाना है, वो खा के अब सोए तो सुबह 8-9 बजे नाश्ता कौन करे? बेहतरीन खाना फजर के बाद का, क्योंकि अगर उस वक्त खा लिया तो नींद उड़ जाएगी। ये उम्मत है, ये खोई हुई है, आज की उम्मत परेशान है। आप देखिए कि लफ्ज़ यहूद हम बोलते हैं ना तो हम उनको बड़ा बुरा कहते हैं, हालांकि अगर वो आज दुनिया में राज कर रहे हैं और शुरू से करते आए, तो उसके पीछे उनकी कुछ आदतें हैं, खाना पीना, स्लीपिंग हैबिट्स, मुतालिया और इस तरह की बातें, ये कुछ है। किसी ने एक मौके पे उनकी एक बुक की तरफ इशारा कर दिया जो किसी भी तरह किसी अरब मुल्क में पहुंच गए, तो कुछ लोगों ने बहुत तफक्कुर का इजहार किया कि ओहो, हमारे सारे मंसूबे तो खुल जाएंगे, मंजरे आम पे आ जाएंगे। तो जो यहूदी बड़ा था उसने एक जुमला बोला, कहने लगा, आप इत्मीनान रखे, अरब कौम मुतालिया कोई नहीं करती, यानी अगर आपकी बुक वहां पहुंच गई तो पढ़नी किसने है? हैरत की बात कि वो कौम जिसकी पहली बात इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक थी, पढ़ो, और वही कौम आज नहीं पढ़ती। और फर्ज करें कि अगर कुरान पढ़ भी रहे हैं तो समझते कितना, और अगर समझ भी लें तो फिर उस पर अमल कितना करते हैं, और अगर अमल कर भी लें तो उस पर इस्तकामत के दर्जे पे कौन है? क्या हो गया उम्मत मुस्लिमा को? अल्लाह ने कितना मुसलमानों को नवाजा, क्या अल्लाह ने बेवकूफ पैदा किया? अक्ल तो बहुत है इस्लाम पे, अल्लाह तो तौहीद वाले का सीना खोल देता है। इस्लाम के साथ तो अल्लाह की तरफ से खैर, अल्लाह कहते उलुल अलबाब, ओ अक्लमंदो, ओ लुभ वालो, ब्रेन यूज करो, दुश्मनों के मुकाबले पे अपने आप को सीधा करो। और जहां कुरान में दुश्मनों का जिक्र है, कौमुल्ला याकिलून, यकल नहीं रखते, कौमुल्ला यफकहून, आज उम्मत मुस्लिमा ला याकिलून और ला यफकहून पे आ गए, तो क्या पता चला कि वी आर लॉस्ट, हम खो गए। ये उम्मत कहाँ खो गई? रिवायात में खो गई। ये उम्मत आज वो नहीं रही कि जो अल्लाह के नबी छोड़ कर गए थे, जो काम यहूद और नसारा के थे वो आज मुसलमानों ने इख्तियार किए, और जो मुसलमानों को करना था आज वो करने लगे। आज भी मिशनरीज के दर्जे पे काम करते हैं क्रिश्चियंस। मिशनरी जील है उनकी, किसी काम को बड़ी डेडिकेशन के साथ करना ना, कहते मिशनरी जील। वो कैसे अपना दीन फैला रहे हैं ये तो एक नई कहानी है। और आज हम ना कायनात पे गौर करते ना किताब पे गौर करते, कायनात एक खामोश किताब की तरह हमारे सामने खुली रहती है। अल्लाह दिन रात गौर व फिक्र की दावत देते हैं, नफ़ी खलक़ समावात वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लायात लिउलिल अल्बाब। अल्लाह ताला हमें कहते हैं अक्ल करो, समझ करो, और हम कानों पे तकिए दिए, हेडफोन लगाए सो रहे हैं, आंखों पे हमने कुशंस रखे हुए हैं। वो बोलने वाली किताब जो अल्लाह ने हमें दी, हम उसको किसी के मरने पे पढ़ते हैं। अल्लाह ने दुनियावी तरक्की से आपको नहीं रोका, हम दुनिया की तरक्की से पीछे। अल्लाह ने हमें किसी चीज़ से नहीं रोका, और यहाँ अक्ल बंद हुई ना तो हमारे अमल की कुव्वतें भी मुअत्तल हो गई। ये अगला पॉइंट लिख लें, आज अमल भी नहीं हो रहा। ऐसे लगता है कि अल्लाह जो कहते हैं ना लिया ब्लुआ कुमयुकुम अहसनु अमला, रोज़ रात सूरत मुल्क में ये आयत पढ़ के सोते होंगे, लेकिन जब अपने अमल का वक्त आता है तो भूल ही जाते हैं। हाँ हाँ ये भी करना था, अच्छा रमज़ान में करेंगे, उम्रे पे चलते हैं ना, हज पे चलते हैं। भाई तुम्हारे उम्रे इधर क्यों नहीं काम आते, तुम्हारे हज के सिखाए हुए सबक क्यों नहीं आते? अल्लाह रोज़ रात को तुम्हें कहता है देखो मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि देखो कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है और बुरे कौन करता है, तो फिर अमल के वक्त पे तुम्हें क्या हो जाता है? तुम्हारी माशरती ज़िंदगी क्यों इस तरह की हो गई है समझ ही नहीं आता। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया था कि अगर तुम्हें ये यकीन भी हो जाए ना कि क़यामत आने लगी है, तो अगर तुम्हारे हाथ में खजूर की कोई गुठली हो तो उसको भी ज़मीन में डाल दो, यानी तुम्हें उम्मीद है कि इस दरख्त ने अब उगना कोई नहीं, लेकिन फिर भी काम करो। और हम आराम से बैठे होते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बदल गई, और हम अपने इर्द गिर्द को लू के बैल की तरह यूँ चक्कर काट रहे हैं। हमारी मिसाल एक ऐसे बेवकूफ़ की तरह, अरब लोग अपनी ज़ुबान में लफ्ज़ बोलते हैं हुजा, एक फ़र्ज़ी किरदार है, हर मुल्क में होता है ना, बेवकूफ़ बंदे को कहते हैं हुजा। जैसे हमारे यहाँ किसी की अकल की कमी को देख के उसको गधा कह देते हैं ना, तो अरब लोग उसको कहते हैं। तो उसके बारे में एक हिकायत मारूफ है, कहते हैं कि वो एक मश्क पानी की भरी हुई नहर से भरकर घर लाता है, जब घर पहुँच जाता है ना, अब वहाँ रखा तो दोबारा उसी को उठाकर जाकर नहर में उसको डाल आता है वापस, फिर उधर से एक और मश्क भरता है और इधर जाता है इधर जाता है, तो जब कोई उसको देखता है कहता है ये किया क्यों, तुम इधर से पानी ला के उधर और फिर जाके वापस उधर ही डाल रहे हो, जिसको हम कहते हैं कोल्लू का बैल। तो वो आगे से कहता है अरे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं ये पानी नहर को उधार देने जाता हूँ। आज हमारा ये हाल है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, सेमिनार्स में कॉन्फ्रेंसिस में जाइए, धुआंधार बातें लोग करते हैं, करारदादें पास होती हैं, ये होना चाहिए ये करना चाहिए कहीं तन की, लेकिन वो सब कागज़ों पर स्याही बन कर रहते हैं। स्पीकर्स बड़े बड़े जुमले आकर बोल जाते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको मुझे बदलना पड़ेगा, आपको मुझे अपने आप को वापस शुहदा अलन्नास पे लाना पड़ेगा। सारे ऐसे नहीं भी हैं ना, लेकिन अक्सर ऐसे हैं। ये कुरान ये है वो कह लीजिए कि चश्मा, जिसके अंदर से जो खैर फूटती है, जब मुसलमान इसके साथ जुड़े रहते हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत होती है। आज हम लॉस्ट हैं, हमारा GPS लॉस्ट है, हमारे सिग्नल ड्रॉप्ड हैं, हमने एड्रेस गलत डाला हुआ है। आप यहाँ पहुँच सकते थे अगर आपका एड्रेस गलत हो? मैं चूंकि ट्रैवल करती हूँ ना, अक्सर ये सफ़र में होते हैं, तो ये चीज़ें मेरे इर्द गिर्द होती हैं, कभी किसी ने लोकेशन गलत डाली होती है, कभी एड्रेस गलत होता है, कभी बीच में वो बैटरी ख़त्म हो जाती है, किसी जगह ऐसे पहुँचे वहाँ जी फलां सिग्नल नहीं काम करते। आज हम मुसलमानों के सिग्नल्स ड्रॉप्ड हैं। 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया था, अगर उस पे आज ईमान वालों को अमल की तौफीक नहीं मिल रही, वो अपने ईमान को अमल साले में नहीं ढल रहे, वो इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना रहे, जो किताब अल्लाह खुद कहते हैं कि फी ही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून, इसमें तुम्हारा जिक्र है तुम गौर क्यों नहीं करते, तो उस उम्मत को कौन राह दिखाए? सारे फ़ोन बंद कर दें, सारे GPS बंद कर दें, सारी लाइटें बंद कर दें, जाइए कहाँ पहुँचेंगे? किसी जंगल में पहुँच जाएंगे, आप इधर नहीं पहुँचेंगे। वो नबी जिसके लिए मारूफ है कान खुलकुल कुरान, उनका खुलक तो कुरान था, आप तो कुरान का चलता फिरता नमूना थे। और याद रखिए अखलाक से मुराद सिर्फ मुस्कुराना और नरम लहजे में बात करना नहीं होता, ये एक जामे कॉम्प्रीहेंसिव लफ्ज़ है। सारे मामलात सारे अमाल इसको खुल कहते हैं, पुराना होना हंडना بندے کے ساتھ نیکی ہنڈ جاتی ہے، یہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کو پوس نہیں دینا پڑتا کہ میں ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں کتنی ادا سے بات کروں، اور کچن میں جا کے میں نے ماسیوں کے اوپر کتنا چلانا، یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اس قرآن سے جڑیں۔ کہتے ہیں نا کہ واپس آؤ، ہم 2-3 دن پہلے ملکوال گئے تھے، صبح گئے تو ٹھیک ہے، جب واپس آئے تو ہمیں نیویگیٹر جو ٹائم دکھا رہا تھا تو اس سے بڑھ گیا ٹائم، پتہ کیا چلا کہ سڑکیں ذرا ایسی تھی بیچ میں کچھ، تو 30 کلومیٹر سے یا مائل جو بھی ادھر چلتے ہیں ہم آگے چلے گئے ہوئے تھے۔ پہلے ہمارا نیویگیٹر 30 منٹ بتا رہا تھا کہ عشاء تک ہم پہنچ جائیں گے، تو جب وہاں جا کے سب کچھ چینج کیا، راؤٹنگ کو دیکھا، تو پتا چلا کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن سے 30 کلومیٹر آگے آگے ہیں، تو ذرا پھر 30 واپس بھی آنا تھا نا، ہم اپنے ٹارگیٹ سے 1 گھنٹہ دور چلے گئے۔ دیٹ از امت مسلمہ۔ اس پوری دنیا کی نبز امت مسلمہ کے ہاتھ میں، اپنی جگہ پہ آ جائیے، سارا جسم صحیح کام کرنے لگے گا۔ آپ کے گھر میں صبح چیزیں بکھری ہوتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، میری تو چیزیں بکھری ہوں تو میرے سے تو نمک کی جگہ چینی ڈل جائے گی کچن میں کام کرتے ہوئے، کام ہی نہیں ہوتا، بکھرے ہوئے ڈسٹارٹڈ ماحول میں چیزیں بکھری، تھاٹس بکھری، کام نہیں ہوتا۔ آج اس پوری دنیا میں امت مسلمہ کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ وہ نیویگیٹر میں بولتی ہے نا کہ ری راؤٹ کریں، واپس اپنی جگہ پہ آئیں، یہ کریں، اور یقین کریں جس دن حساب کریں گے نا، تو جو غیروں کے نام ہم نے نکالی ہوئی ہیں نا چیزیں، وہ ہمارے کھاتے پڑنی ہیں۔ کبھی کبھی بندے کو بڑا مان ہوتا ہے، میں نے فلان سے اتنے پیسے لینے ہیں، اتنے جی حساب کرو، وہ کہتے بیٹھو، جس حساب کیا پتہ چلا 1 لاکھ لینا نہیں ہے، 10,000 دینے ہیں۔ اس امت نے آج جو غلطی کی ہے، قیامت کے دن بہت سارے غیر مسلم بچ جائیں گے۔ یہاں بیٹھ کے مجھے ویسے یہ بات آپ سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہی لیکچر بعد میں دوسرے بھی اسٹوڈنٹ سنتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آج ہماری بے عملی اور آج ہمارا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا سے ہٹنا کتنے غیر مسلموں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے جائے گا قیامت کے دن، بچ جائیں گے وہ، کیونکہ کافر اس کو کہتے ہیں جس کو اسلام پیش کرو پھر وہ ریجیکٹ کریں، ادروائز وہ اگنورنٹ ہے، وہ غیر مسلم تو ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ آپ مجھے پانی پیش کریں، میں کہتی ہوں میں نے نہیں پینا، یہ ہے انکار، تو آپ نے مجھے پیش ہی نہیں کیا تو میں کیسے منکر ہو گئی۔ آج ہم سست ہیں، وہ بچ جائیں گے کل، اللہ پھر اس کا بھی حساب کرے گا، اللہ نے اس کا بھی طریقہ رکھا ہوا ہے جو اس وقت آپ کو نہیں بتانے کی ضرورت۔ لیکن آج ہم کام نہ کر کر بہت سارے لوگوں کو سہولتیں دے رہے ہیں، اور ہماری حالت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تمہیں کیا ہو گیا، تم وہ بات کرتے ہو جو کہتے نہیں، یا جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ دیکھو اللہ کو یہ کال اور فیل کا تضاد بہت برا لگتا ہے، اور آج پوری دنیا کے اوپر امت مسلمہ کی اس روش اور اس رویے کی گہری چھاپ ہے، غیر بھی جانتے ہمیں، مت سوچئے کہ گھر بیٹھے، چلے یہاں بیٹھ کر کچھ کر لیں، خیر ہے اپنے ہی ہیں نا سارے بیٹھے ہوئے، تو اگر کسی غیروں میں کسی شریکے میں جا کر کوئی غلط کام کرے تو بندے کی شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہے کہ یہ غیر کیا کہیں گے، وہ تو بغلیں بجائیں گے۔ دیکھیں نا لڑائی ہو جائے میاں بیوی کی اور غیر شریک بھی دیکھ رہے ہوں، تو وہ کہے گی لڑنا تھا تو اللہ کے بندے گھر جا کے لڑتے، سب کے بیچ میں کیوں میری بےزتی کی۔ تو آج ہم مسلمان میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا کی نظروں میں ہیں، وہ بھی خبریں دیتے ہیں، شہر سرخیاں، وہاں گولی مار دی، وہاں لڑکی نے خودکشی کر لی، اللہ کی پناہ میں کہتی ہوں آپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ محاورہ آج ہمارے ٹی وی چینلز پہ چلتا ہے، 2-3 دن پہلے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی، کہیں خبریں چل رہی تھی تو مستقل نیچے پٹی چل رہی تھی، ادھر گولی مار دی، ادھر وہ مر گیا، ادھر گیس کا چولہا پھٹ گیا۔ اللہ کے بندو کیوں یہ خبریں دے رہے ہو، یہ اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ خبریں جب ویسٹ میں سنتے ہیں ہم لوگ جیسے مسلمان جو رہتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اچھا وہ اس پاکستان میں جا رہے ہیں جہاں نالیوں میں کیچڑ ہوتا ہے، جہاں مچھر ہیں، جہاں ڈنگی پھیل گیا، اچھا اچھا آپ اس پاکستان میں ہیں جہاں چوریاں بڑی ہوتی ہیں، تو سوچنے کی بات ہے۔ آج ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا ایک ہی محور ہے، وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہماری عاجزی اور لاچاری کی زندہ مثالیں ہیں، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ اللہ میں عاجز ہونے، بے بس ہونے اور سست ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج امت معذرت کے ساتھ اکثریت اس میں سے ان دو کا شکار ہو گئی۔ آج ہم اپنے آپ کو سیٹ کر لیں، ورنہ یاد رکھیے بہت برا وقت آنے والا ہے۔ اگر امت مسلمہ نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو کیا ہوگا، ये इसकी सजा हमारी नस्लें भुगतेंगी। सर उठा के नहीं जी सकते आज हमारे बच्चे। आज हमारे बच्चे कहते हैं वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम, हमें शर्म आती है कि हम मुसलमान हैं। और यहाँ छोड़िए, हम बाहर के मुल्कों में भी जाके बड़े गुल खिलाते हैं, रूल तोड़ने में, ट्रैफिक के लॉज ब्रेक करने में, बिजली चोरी करने में, और झूठे कागज़ बना के वीज़े लेने में हम बदनाम हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को अलाउड हैं, हमें नहीं अलाउड। तो बहरहाल खुलासा कर देती हूँ दो तीन मिनट में, कमज़ोरी और पसपाई है आज। बर्क वाकई गिर रही है बेचारे मुसलमानों पर, वाकई आज भी रहमतें हैं अगियार के काशानों पे। वजह सूरत अल अनफाल आयत 46, इलाज बता रही हूँ। करो क्या बाती अल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहु और उसके रसूल की भी इताअत करो। दूसरा काम, तीसरा क्या ना करो, वला तनाज़ाउ आपस में झगड़े छोड़ दो, तनाज़े छोड़ दो, वरना क्या होगा, फतफशलु तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, वतसखबरी हुकुम और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, बदनामी होगी, बदनाम हो जाओगे इसलिए। और चौथी चीज़ क्या करो, वसबीरो सब्र करो, नफ्स पे कंट्रोल करो, ख्वाहिशात के ऊपर पाँव रखो, अपनी एलैबोरेटेड और एक्सटेंडेड ख्वाहिशात को पूरा करने में हलाल हराम का फ़र्क ना मिटा दो, क्योंकि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी बात, आज कमज़ोरी और पसपाई की वजूहात में जो हमने सीखी बात, बुनियादी पिन पॉइंट कर लें, मुसलमानों ने अपनी किताब, अपनी शरीयत और अपने रब के अहकाम से मुँह मोड़ा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात से मुंह फेर लिया। दो खानों में बट गए आज, कुछ दीनदार कुछ दुनियादार। कोई हमारा सिर्फ दीन का खाता खुलता है तो कहीं सिर्फ दुनिया का, दोनों को जोड़िए, फूट और इंतशार का शिकार हो गए। हालांकि हमें खुद पता है कि इत्तहाद और इत्तफाक में बरकत है। इत्तहाद और इत्तफाक होता है ना तो कमजोरों को भी ताकतवर बना देता है और ताकतवरों की कुव्वत को दुबला करता है। वो याद है वाकया, बाप ने बेटों से कहा लकड़ियां लाओ, ले आए, कब तोड़ दो तो तोड़ दी, कब फिर लाओ लकड़ियाँ, फिर इनका एक गट्ठड़ बनाओ, कब इस गट्ठड़ को तोड़ो, नहीं तोड़ सके। सबको ये बचपन से सबक आते हैं, लेकिन फिर हम तेरी मेरी में पड़ गए। इत्तेहाद है जो किसी कौम की सरबुलंदी का जरिया होता है, मुसलमानों की इज्जत और सरबुलंदी इसी इत्तेहाद और इत्तफाक में, और उधर बरकत होगी जहाँ दिल जुड़े होंगे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल मोमिनु लिल मोमिन, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए क्या है, कल बुनियान, एक इमारत की तरह जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। और ये कहकर फिर आपने अपनी उंगलियों को यूं किया, ये देखिए हाथों में से उंगलियां डाल के कि इस तरह एक दूसरे को मजबूत करो। और याद रखिएगा कि ईंट ख्वाह कितनी ही मजबूत क्यों ना हो और इसकी तादाद लाखों में क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुंतशिर इधर उधर बिखरी पड़ी हो तो ढेर है। और ढेर की ईंटों को एक दीवार की शक्ल में डाल दो तो वो एक बड़ी प्यारी बुनियादों मरसूस बनती है। आज हम मुसलमानों को बुनियादों मरसूस बनने की जरूरत है। बीइंग अ मुस्लिम हमें दूसरों से कितना को प्यार है, सिर्फ इस्लाम के नाम पर आप किसी से कितना को प्यार करते हैं। ये छाबड़ी वाला मुसलमान है, ये रिक्शे वाला मुसलमान है, ये टांगे वाला जो आपकी बड़ी गाड़ी के आगे जा रहा है ये मुसलमान है। प्यार कीजिए। हम दूसरों से हसद भी करते, बुग़्ज़ करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है 6541, अबू हुरैरा रावी हैं कि आप मुसलमानों को फरमाए कि एक दूसरे से हसद ना किया करो, एक दूसरे से धोखे से कीमतें ना बढ़ाओ, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से मुंह ना फेरो, तुम में से कोई दूसरे के सौदे पर सौदा ना करे, और अल्लाह के बंदे बन जाओ और आपस में भाई भाई बनो, क्योंकि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है। अब आप अपने लिए चेकलिस्ट खुद बनाएं कि मैं तो नहीं ये करती, ना इसे बेजारो मददगार छोड़ता है, ना उसकी तहकीर करता है। फिर आपने इधर हाथ लाया, यशीरु इला सदरी, फरमाया तकवा यहाँ है, अतकवा हा होना, अतकवा हा होना यानी तकवा दिल में है, और फरमाया किसी बंदे के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वह अपने किसी मुसलमान भाई की तहकीर करे, यानी उसको हकारत से देखे, और हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमानों के खून माल और इज्जत हराम है। ज़रा से सोचिए, जान तो हम नहीं लेते, अल्लाह का शुक्र है, खून भी नहीं बहाते, क्या इज्जत किसी की तोड़ते, माल किसी का नाहक खाते। एक तो बेचारों का बाप मर गया, दूसरा अब उनसे खाने खा रहे हैं, यतीमों से जाकर इतनी लंबी चौड़ी दावतें खाते हैं, क्या माले नाहक नहीं है? तो आज उम्मत मुस्लिमा पे जो मुश्किलात हैं उसका और पूरी इंसानियत पे जो कोरोना नाम से एक वबा आई, उन सब से बचने का रास्ता मुसलमान बैक टू दी बेसिक्स पे आए, मसलक और इत्तेहाद और इत्तफाक और मज़हब और मसलक से ऊपर उठकर इंसानियत की बका के लिए काम करें, और अमन और सुकून इस्लाम की शिनाख्त है। और आखिर में आले इमरान 103 पे अपनी बात पूरी करूँगी, वा तसीमो भी हबलिल्लाह जमिया बला तफर्रको, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफरकों में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और इसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए गढ़े के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नजर आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रास्ते से भटकी हुई उम्मत को वापस ले आ। वो कहते हैं ना, भटके हुए आंखों को फिर सुए हरम ले चल। सुए हरम तो ले चल, मैं कहती हूँ सुए मदरसा ले चल। तो आप अपनी बच्चियों को, बच्चों को, खुद को कुरान से जोड़ें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व तुबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। अल्लाहुम्मा अस्तुर अवरातिना व आमिर अवातिना। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वरहमना वाफ़िना वाफ़ु अन्ना। या अल्लाह, हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमा, हमारी गलतियों की इस्लाह फरमा, हमें माफ़ कर दे। जिन साथियों ने बहुत मोहब्बत से सुना, जो अपने घरों से सुबह सुबह निकल कर आए, सबका आना कबूल फरमा। या अल्लाह, करीब से या दूर से जो भी आया तो उसका आना यहाँ बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह, सबके दिलों में जो ख्वाहिश आता है और अभी जो इन्होंने आके मुझे बतानी भी है, या अल्लाह तो अभी इनकी कबूल कर ले। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, आपको मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके प्यारे, जिसकी जो भी ख्वाहिश है, जो तलब है, अल्लाह पूरी करे। जिसका जो मुश्किल है उसके दूर कर दे। आपके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह हमारे घरों में दीन की बहारें डाल दे। अल्लाह नेक जोड़ मिला दे बच्चे और बच्चियों के। या अल्लाह, हमें अपने रिश्तों में दीन को सामने रखने वाला बना। और या अल्लाह, ये इल्म की महफिलें हमारे हक में हुज्जत हों, हमारे खिलाफ हुज्जत ना हो। या अल्लाह, इस हॉल पे भी अपनी रहमत फरमा, और जिन्होंने भी इसमें अरेंज किया, जो भी इसमें मुआविनीन थे, या अल्लाह सबको कबूल फरमा। और हम सब को भूला बस सबक याद दिला, और भटके हुए साहू को फिर वापस इस कुरान का रास्ता दिखा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।